الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کو واقعی ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عمل میں لے آئے. اللہ تعالی سے ہی درخواست ہے کہ ہم تو کمزور ہیں، اللہ ہی ہے جو اس کی توفیق دے کہ انسان جو پڑھے اس کے اوپر عمل کر سکے. تو اللہ تعالیٰ عمل آسان فرما دے اور وقت پہ ہمیں عمل کرنا یاد کرا دے. آج سورہ یوسف آیت نمبر 84 سے لے کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ تک سورہ کو مکمل کریں گے، 111 آیت تک. دیکھتے ہیں ہم اس کی تفسیر. جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو اب عزیز کا عہدہ مل چکا ہے، جو بھی ایک ٹائٹل تھا وہاں پہ، اور وہ فائنانس منسٹر ہیں اب، ٹھیک ہے، اور ان کے ہاتھ میں اب جو بھی خزانے وغیرہ ہیں وہ ہیں. انہوں نے جیسے پلاننگ کی، اس کی وجہ سے قحط کے دنوں میں بھی ان کے پاس وافر مقدار میں غلہ موجود تھا. یہاں تک کہ قریب قریب کے لوگ بھی سارے ان کے پاس آتے تھے غلہ لینے کے لیے. اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بھائی آئے اور اس کے بعد انہوں نے ان کو غلہ دیا، لیکن اگلی دفعہ یہ کہہ کے بھیجا کہ اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا. بھائیوں نے کسی طرح باپ کو منا لیا اور بنیامین کو ساتھ لے گئے، جن کے اوپر پھر یہ چوری کا الزام لگا کے اور ان کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اس وجہ سے کہ اس ملک میں، ورنہ یہ ایسا قانون نہیں تھا کہ وہ اس وقت ان کو کسی طرح بھی اپنے پاس رکھ سکتے. اب بھائیوں نے جب آ کر باپ کو بتایا کہ ہمارا چھوٹا بھائی بھی وہیں رہ گیا اور بڑا بھائی اس وجہ سے کہ وہ باپ کو منہ نہیں دکھا سکتا تو وہ بھی رہ گیا، تو اب اندازہ کیجئے کہ باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، جس کا پہلے ہی ایک لاڈلا بیٹا گم ہو چکا، پھر جو دوسرا تھا وہ بھی. اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کے بعد باپ کو سب سے زیادہ جو اپنا بڑا بیٹا تھا وہ عزیز تھا. اس میں کچھ نہ کچھ آپ دیکھتے نا کہ خیر تھی زیادہ دوسروں کی نسبت. لیکن اتنا صدمہ ٹوٹنے کے باوجود آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. اور جمیل صبر میں نے آپ کو بتایا کہ بہت اعلیٰ درجے کا صبر ہوتا ہے. وہ صبر ہے کیا؟ سیلف کنٹرول ہے بس. چاہے غم ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے غصہ ہے، چاہے جذبات ہیں، چاہے ٹیمپٹیشنز ہیں، چاہے خواہشات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کے اندر سیلف کنٹرول، خود کو تھام لینا، خود کو کنٹرول کر لینا، آپے سے باہر نہ ہو جانا، جذبات کی رو میں نہ بہہ جانا، بالکل جزا فضا نہ شروع کر دینا، ہائے دعائیاں نہ شروع کر دینا، آئے بائے جو اس کو کہتے ہیں وہ دعائیاں نہ شروع کر دینا، بیکار ہو کے نہ بیٹھ جانا، لوگوں کو بھی ستانا اور خود بھی پاگل پنے کے مظاہرہ کرنا، یہ صبر کے خلاف ہے. وہ صبر انبیاء کی سنت ہے. اور صبر ہے تو تین ہی حرف، لیکن بڑا ہی مشکل ہے، بڑا ہی مشکل ہے، آسان تو نہیں ہے. صبر کہہ دینا، اس کے لیکچر بھی دے دینا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اور ہم سب آزمائے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں صبر کے ساتھ. کہیں خوشیاں آ جاتی تو ہم بے صبر ہو جاتے ہیں، کہیں غم ٹوٹتا ہے تو اس بے صبر ہوتے ہیں، کہیں غصہ آ جاتا ہے تو اس میں بے صبر ہو جاتے ہیں، کہیں ہمیں کوئی خواہش ہوتی ہے ایسی کہ بس یہ ہمیں چیز مل جائے یا یہ میری خواہش پوری ہو جائے تو تب ہم بے صبر ہو جاتے ہیں. ٹیمپٹیشنز کہیں ہوتی ہیں تب ہم بے صبر ہوتے ہیں، جب جذباتی ہو جاتے ہیں تب بے صبر ہو جاتے ہیں. کہاں کہاں ہم ٹوٹتے اور گرتے ہیں. لیکن یہ ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم بار بار سیکھیں، बार बार हमारी याद दहानी हो, बार बार ये सबक हमें इतना पक्का हो जाए कि अमल के वक्त याद आ जाए। हो सकता है अभी आप ये सीख रहे हैं और फिर उसके बाद आप कहें मैं तो कभी सब्र कर ही नहीं सकती, ओके मैं तो हर दफा जब मुझे गुस्सा आता है मैं ऐसे हो जाती हूँ, जब मैं जज्बाती होती हूँ मैं ऐसे हो जाती हूँ, जब कोई मुश्किल आती है तो मैं ये रिएक्शन शो करती हूँ। हो सकता है आप बार बार गिरे, लेकिन इंशाल्लाह जब पढ़ते रहेंगे ना तो एक दिन आएगा कि ये चीज फिर उस वक्त याद आ जाए करेगी और कंट्रोल करना मुमकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सेल्फ कंट्रोल दे। तो अब वो जो इतना बड़ा एक और पहाड़ टूटा, तो अभी पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम की अभी मजीद आजमाइश अल्लाह ताला को लेनी थी, अभी उनको मजीद इस इम्तिहान में डालना था। कहाँ एक गुम था और कहाँ तीन बच्चे गुम हो गए और उनका कोई नहीं रास्ता पता कि कैसे अब वापस आएंगे। लेकिन आप ये देखें कि क्या फरमाते हैं, वतवल्लान हम, और उसने मुंह फेर लिया उनसे, यानी बेटों के साथ आप एक तरफ को मुंह करके बैठ गए, क्योंकि बेटों के सामने नहीं ना जाहिर करना चाहते थे, बेटों के दर पे नहीं हो गए कि तुम मुझे बताओ किधर गए क्या हुआ क्या, बस एक तरफ हो गए जैसे पहले हुआ था जब यूसुफ अलैहिस्सलाम घूमे थे। वकाला या असफ अला यूसुफ, और फरमाने लगे हाय अफसोस यूसुफ पे, अब गुमे दूसरे भाई हैं और गम यूसुफ का, यानी वो गम ऐसा था जो इसने इनको कभी छोड़ा ही नहीं था। तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर रहे हैं, वब यद्दत ऐनाहु मिनल हुज्न, और उसकी आंखें सफेद हो गई थी गम की वजह से, यानी रो रो के ना आंखें सफेद हो गई, यानी अंधे हो गए थे। तो क्या ये सबर के मनाफी है? क्या ये बेसब्री है रोना? असल में बात ये है कि रोना जो है ना ये बेसब्री में से नहीं है, इसलिए कि आप देखें कि नबी अलैहिस्सलाम के बेटे जब इब्राहिम की वफात हुई थी तो नबी अलैहिस्सलाम की गोद में थे इब्राहिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चे को देख रहे हैं। सोचें एक 2-3 साल का बच्चा क्या होता है, जो बड़ा प्यारा भी लाडला सा भी बच्चा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने बच्चे की जान जाती निकलती देख रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े शफीक और मेहरबान थे और बड़े नरम दिल थे। वो खैर कोई भी हो तो उसके क्या हालत हो जाएगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। जब सहाबा ने देखा तो हैरान हो गए, उन्होंने कहा या रसूल आप रो रहे हैं, यानी उनके लिए तो ये था कि आप कैसे रो सकते हैं, आपको तो रोना ही नहीं चाहिए, तो इतने नेक इंसान को तो हम सोचते हैं ना इसको तो कोई गम ही नहीं होना चाहिए, तो बस इस तरह पत्थर की तरह बना रहे, ऐसे नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोना रहम की अलामत है जो अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल में रख देते हैं, ये तो रहमत है अल्लाह की, ये रहम होता है। तो रोने की बात नहीं है, लेकिन जुबान वो बात कहे जिससे अल्लाह राजी होता है, और दिल में ऐसा ही ख्याल हो जो अल्लाह की फैसले में राजी होने का, ना दिल में गलत ख्यालात हो और ना जुबान पे कोई गलत बात आए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए इब्राहिम अब तेरी जुदाई में बहुत गमगीन है, मगर जुबान वही कहेगी जिससे अल्लाह राजी होता। तो यहां से हमें पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम रोए तो थे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको अल्लाह ताला से कोई फैसले पे कोई एतराज था, या वो इसके पर नाराज थे अल्लाह से, या कुछ ऐसी बात, लेकिन इंसान का कंट्रोल अपनी आंखों पे नहीं होता, जैसे कि मोहब्बत में कंट्रोल नहीं होता ना, इस तरह आंखों पे भी नहीं होता। तो उनकी आंखें गम की वजह से सफेद हो गई थी, सोचिए अंदाजा कीजिए कि इतना गम होगा। लेकिन फहुआ कजीम, लेकिन वो उसको पी जाने वाले थे, कैसा मतलब असल में होता है कवर कर देना, पी जाना बस अंदर ही उसको डाल लेना, और कदीम फाइल के वजन पे है जिसमें बहुत ताकीद है, यानी वो इसको जाहिर नहीं कर रहे थे अंदर ही पी गए। तो जिसको हम कहते हैं सप्रेस कर लेना या गम को कंट्रोल कर लेना, तो क्या अगर हम किसी को अपना गम शेयर करें तो क्या बुरी बात है? क्या किसी कोई तसल्ली देते, कोई कोई बात, कोई चार अल्फाज हमदर्दी के कह दे, ये उसमें कोई हरज की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है कि इंसान की आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, उसका गम उसके चेहरे पे भी आया हुआ है, पता भी चल रहा है। लेकिन असल में बात यह है कि ये बहुत आला दर्जा है कि इंसान उस गम को अंदर ही डाल ले, लोगों को दुखड़े अपने सुनाता ना फिरे कि जिसके पास बैठे उसके पास अपना गम बता रहा है, उससे हमदर्दी ले रहा है, उससे हमदर्दी ले रहा है। और बहुत ही कम लोग इस दर्जे तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अक्सरियत इंसानों की ये कहती है कि कोई मेरे पास बैठे, कोई मेरे गम को शेयर करे तो फिर मेरा गम हल्का हो जाएगा। तो ऐसे कोई गम को अंदर पी जाना, ये बहुत बहादुरी का काम होता है, बहुत बड़ा काम है। और याकूब अलैह सलाम सुभान अल्लाह ऐसे थे, जाहिर है अल्लाह के पैगंबर जो थे। अब देखिए आप सोचेंगे कि वो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, हमारे तो ये बस की बातें नहीं है ये, लेकिन अगर आप देखें ना तो इन चीजों से हम सीखते हैं एटलीस्ट। हम नेक्स्ट टाइम हम कोई हमें कोई परेशानी है तो हम कम से कम उसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो कजीम है कि वो खामोश हो गए थे, अपना दुख किसी को कहते नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कजमा होता है ना कवर कर देना, बंद हो जाना, भर जाना। तो उनका दिल भर गया हुआ था लेकिन जुबान बंद थी, किससे बयान नहीं करते थे। हम पहले भी सूरह आले इमरान में कजीम पढ़ चुके हैं, कादिमीन अल गईज, गुस्से को पी जाने वाले, तो गुस्से को भी इस तरह से पिया जाता है। तो मुसीबत के वक्त इंसान का रवैया, जो बड़े लोग होते हैं उनका रवैया कैसा है वो आप देख सकते हैं। कालू, उन्होंने कहा, तल्ला, उन बेटों ने कहा, तल्ला कसम अल्लाह की, तफ्ता होता यूसुफ, आप तो हमेशा ही यूसुफ का ही जिक्र करते रहते हैं, हत्ता तकुना हरा तर, यहाँ तक कि आप तो बेकार ही हो जाएंगे, अब तकुना मिनल हालकीन, यहाँ आप हो जाएंगे हलाक होने वालों में से। अब देखें वो जाहिर नहीं करना चाहते, इसीलिए मुंह फेर के इधर को बैठे, और फिर जो बात उन्होंने की तो बेटों ने सुन ली, बेटों के कानों में पड़ी, यूसुफ लफ्ज ही पढ़ा, नाम यूसुफ अलैहि सलाम का सुना है तो वो एकदम कहने लगे बस आपने तो उसका छोड़ना ही नहीं कभी जिक्र। और ऐसे बाज दफा औलादें भी वालदेन को फिर जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे ये बच्चे हैं और हम इनके वालदे हैं। और ये देख लें, यहां से ये भी पता चलता है कि अगर किसी से शेयर करें ना तो इंसान का यही होता है कि दूसरा भी फिर तंग आ जाता है। वो तो शेयर नहीं भी करते थे तब भी इन्होंने ये सुन के ही, वो देखें कैसे, यानी उन्होंने एक बात की, इरिटेट हो गए। और अगर कहीं शेयर करते होते तो क्या होता, तो अपने बाप से बड़ी सख्ती से बोले कि आपने तो अपने आप को हलाक ही कर लेना, बीमार हो जाएंगे आप और आप ऐसे हो जाएंगे। तो बास दफा औलादी वालदेन से इस तरह रूठ तरीके से बात करती जो कि किसी तरह से भी जायज नहीं। बल्कि कोई भी अगर आपके पास कोई अपना दुख लेकर आता है तो इस तरह से उसके साथ बात करना तो हरगिज अच्छा नहीं। कभी कभी आप किसी के साथ कोई उसका दुख वो बयान करे, कोई उसका गम वो बयान करे और आप उसको शेयर कर लेते हैं, जिससे उसके दिल को तसल्ली हो जाए, और उस दो बोल आप उसको हमदर्दी के बोल देते हैं, तसल्ली के बोल देते हैं, तो वो भी जो आपने उसके दिल को कंफर्ट दी है ना, वो भी आपके लिए नेकी है, वो भी आपके लिए एक सवाब का काम है, वो भी किसी की मदद करना। बाज दफा फिजिकल मदद की नहीं किसी को जरूरत होती, मगर ऐसे वक्त में लोगों को मदद चाहिए होती कि कोई उनको थाम ले। तो हम ये कहते हैं लो अब इसका दुख हम सुनने बैठ जाएं, अब इसका, लोग तंग पड़ जाते हैं, लिहाजा बताने वाले को भी हर वक्त नहीं बताते रहना चाहिए, वरना वो अपने आप को बेवकत कर देगा। तो दोनों तरफ हमें समझने की जरूरत है, अगर आप सुनने वाले हैं तो तब भी इस तरह का रवैया ना इख्तियार करें कि दूसरे को और ही दुखी कर दें और उसको और डांट के बिठा दे, और अगर आप गम शेयर करने वाले तब भी इससे देख लें और समझ लें कि इंसान अपना गम किसको कहे, इन्नमाश को बसी व हुजनी अल्लाह। उन्होंने क्या फरमाया, मैं तो अपना गम अपना दुख जो है ना अपने अल्लाह के आगे रखता हूँ, क्योंकि जब आप लोगों के आगे रखेंगे ना एक दिन लोग तंग पड़ जाते हैं, लोग कहने लगेंगे इसका तो काम ही यही है, लोग अब आपसे हमदर्दी नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमें तो सर में दर्द हो जाता है। लेकिन एक अल्लाह वो है, वो जात जो कभी थकता नहीं हमारे गम सुन सुन के, बताएं तो सही हम उसको बताने वाले तो बने। तो फरमाया मैं तो अपना ही शिकायत करता हूं अपनी परेशानी की। अब आप सोचेंगे कि शिकायत करता हूं क्या, याकूब अलैहिस्सलाम शिकायतें कर रहे थे, अल्लाह से शिकवा कर रहे थे। शिकायत ही वो शिकायत नहीं है जिसमें आप कहें कि अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, दिस इज नॉट फेयर। और जो है ना, बाज लोग अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला हमें रहम फरमा दे, जुबान से ये तक कह देते हैं कि अल्लाह ने क्या मुझे ही देख लिया कि मेरे ऊपर ही मुसीबतें लाता जा रहा, मेरा घर ही देख लिया, मैं ही रह गई हूं, हम क्या चीज हैं। और वो जात खुद सोचे तो सही किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो अल्लाह ताला को इल्जाम नहीं दे रहे, अल्लाह ताला को कोई इस चीज के ऊपर उसके फैसले से नाराज नहीं हो रहे, बल्कि यहां पे शिकायत का मतलब क्या है कि अल्लाह मैं तेरे ही आगे रखता हूं अपना दुख, अपना दर्द, अपनी कहानी, ये मेरा गम है। और इंसान ऐसा कर सकता है। और आप देखते हैं कि ताइफ में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़े थे, तो जो दुआए मुस्तदाफीन है वो क्या है, दुआए मुस्तदाफीन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते ना, अल्लाह मैं तेरे आगे अपनी शिकायत रखता हूँ। यानी इंसान अपना दुख और अपना गम अल्लाह को सुनाए, उसके आगे रोए, उससे मांगे, इससे अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और हालात तो हमारे अल्लाह ने बदलने हैं ना, किसी और ने तो नहीं बदलने। तो किसी और के सामने आप बैठ के गम सुना भी देंगे तो वो बेचारा क्या कर सकता है, सुन ही लेगा ज्यादा ज्यादा, और क्या करेगा, वो भी उतना ही कमजोर है जितने आप हैं। मगर जब अल्लाह के सामने सुनाते हैं तो वो सुन भी लेता है, वो कभी ये नहीं कहेगा बार बार वो ही सुनाती जा रही है, तुम्हारा तो गम ही नहीं खत्म हो रहा, तुम तो बस अब निकल आओ इससे, बस करो अब ये नहीं। वो हमेशा ही सुनेगा, रात को सुनाए, दिन को सुनाए, जिस वक्त भी सुनाए वो तुम सुनने को तैयार है। वो आपके लिए ही है, कोई जात ऐसी हो सकती है जो सिर्फ आपके लिए ही हो 24/7, रात हो या दिन, छुट्टी हो या वर्किंग डे हो, वो सिर्फ आपके लिए ही बंदा हुआ हो, कोई भी नहीं ऐसा। अगर अल्लाह ताला को ऐसा समझे, ये समझे कि वो मेरे लिए ही है बस, क्योंकि वो आपके लिए भी ऐसे ही सुनता है जैसे किसी और के लिए और किसी और के लिए और किसी और के लिए और सारे जहान के लिए, और चरिंद परिंद चूंटियों तक की भी दुआओं को और आवाजों को सुनता है, तब भी आपसे गाफिल नहीं है। तो इन्नमा कलमा हसर है, मैंने आपको बताया हुआ था कलमा हसर का, कि कलमा हसर क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ का माना हो कि इसके अलावा कुछ नहीं। यानी वो फरमाते हैं कि मैं अपना दुख सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को सुनाता हूं, उसके सिवा किसी को भी नहीं, किसी को कहते ही नहीं है वो। तो आप भी ऐसे अपने हालात अल्लाह ताला के सामने रखें और हालात खोल के रखें, तो वो हर एक को पकड़ पकड़ के उनको नहीं सुनाते, देखो अब मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी नजरे करम चाहते हैं। तो ये दुआ बड़ी प्यारी है, जब भी आपको लगे कि अब कोई, मैं किसको सुनाऊं अपनी बात, कभी कभी इंसान ना समझ भी नहीं आती कि किसको सुनाए। जाहिर ही बात है कि एक तो खास तौर पे काफी सिस्टर्स लिखती हैं ईमेल में कि हमारा यहाँ पे कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, वालदैन इतनी दूर रहते हैं कि अगर उनको दूसरे मुल्क में बताएंगे तो वो वहां दुखी होंगे, बहन भाई कोई करीब है नहीं, कोई ऐसे दोस्त है बाप नहीं जिनसे शेयर किया जाए, तो हम क्या करें, वो इस वजह से डिप्रेस होते हैं। तो आप जानते हैं एक हस्ती ऐसी है जो आपके राज को भी कहीं फाश नहीं करेगा, और जो आपसे हमदर्दी भी रखता है, जो आपका खैरख्वाह भी है, जिसके हाथ में आपके हालात को चेंज करना भी है, और जो ऐसा है कि कभी तंग ही नहीं आएगा, उसको क्यों नहीं कहते। और जिसके सामने ये भी डर नहीं है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, दफा इसलिए भी तो नहीं इंसान किसी के साथ शेयर करता कि किसको सुनाऊं, बेइज्जत हो जाऊंगी। तो इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, जब गाओ उसके लिए दुआ याद कर ले और अल्लाह की आगे ही अपना अपना शिकवा रखे। और हमें ये भी सिखाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हमने कोई भी मुश्किल मुसीबत आए तो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो, ये तलकीन किया हमने। ये कलमा भी इंसान को रंज और गम और तकलीफ से निजात देने वाला है, और सिर्फ किसी की डेथ पे नहीं पढ़ते, कोई भी बात हो जाए। तो यहाँ पे आपको पता चला कि इतनी सारी मुद्दत में याकूब अलैहि सलाम पे क्या गुजरती रही और उन्होंने अपने दिन और रात कैसे काटे। याद रखिए इस कहानी में यूसुफ अलैहि सलाम का तो इम्तिहान है ही है, हर एक का इम्तिहान है जो उनके इर्द गिर्द है। तो जब एक इंसान का इम्तिहान हो रहा होता है ना, आप सोचते हैं ये बड़े इम्तिहान में पड़ गया, वो सिर्फ उसका नहीं हो रहा होता, हमारा भी होता है जो उसको देख रहे हैं, जो उसके इर्द गिर्द है, उसके पास है। आप देखें यहाँ पे यूसुफ अलैहि सलाम तो इम्तिहान में ही है मुसलसल, लेकिन याकूब अलैहि सलाम का भी इम्तिहान है, भाइयों का भी इम्तिहान था, उस औरत का भी इम्तिहान जो अजीज मिस्र के घर में थी, अजीज मिस्र का अपना भी इम्तिहान था, काफले वालों का भी इम्तिहान था, सब इम्तिहान में। और हम सोच रहे होते हैं सिर्फ यही इम्तिहान में। आपके घर में कोई बीमार हो तो वो उसका तो इम्तिहान चल ही रहा होता है, उसके इर्द गिर्द वालों का भी इम्तिहान हो रहा होता है, वो क्या करते हैं। वआलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, और मैं जानता हूं वो बातें अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। क्या बात थी वो कि सब में भी खैर है, और ये भी कि अल्लाह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, और ये भी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है, और ये भी कि एक दिन उनका ख्वाब सच्चा होगा। ये सब बातें तो भाई तो नहीं जानते थे ना। तो यहां से पता चलता है कि उनको कितना अल्लाह ताला पे यकीन था, कितनी अल्लाह ताला की पहचान थी उनको। तो जब दिल गम से भर जाए तो फिर ये कहें इन्ना माश को बसी बस नीला। और उसके बाद देखें, अब तो इंसान सोचता है ना, जब एक मुसीबत आती है फिर ऊपर दूसरी आ जाती, फिर ऊपर तीसरी आ जाती, फिर ऊपर चौथी आ जाती, तो इंसान सोचता है हाय बस अब कुछ नहीं रह गया, मायूस होना ही शुरू हो जाता है ना। देखिए यूसुफ अलैहि सलाम गुम हो गए, फिर रो रो के इनकी आंखें अंधी हो गई, एक और मुसीबत है ना ये भी, फिर एक बेटा चला गया, फिर दूसरा भी चला गया, कितनी सारी पहाड़ टूटते जा रहे। अब उसके अंदर ये नहीं कि वो मायूस हो गए, या ये नहीं कि वो, जैसे अल्लाह ताला माफ फरमाए, हमारे हालात ये हैं कि ऐसी कोई बात हो जाए ना तो फौरन हम सोचते हैं बस जी किसी ने तो जादू कर दिया, बस जी किसी ने तो ऐसे कर दिया, चलो आओ उसके पास चलें, उसके पास चलें, एक के ऊपर एक मुसीबत आती जा रही है, ये तो जगह हमें रास नहीं आई, ये तो हमें या कोई किसी का कोई ऐसा तावीज गंडा कोई उस चीज तरफ जहन चला जाता है। हालांकि अल्लाह के पैगंबर हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई जादू है, ना कोई टूना है, ना कोई तावीज है, ना कोई जगह का ऐसा है कि वो कहेंगे तो जगह ही नहीं हमें रास आई, बस चलो यहाँ से माइग्रेट करो, नहीं। वो देखें वो क्या कहते हैं, उनकी उम्मीद आज भी खत्म नहीं हुई, आज भी टूटी नहीं है, बल्कि जितनी ज्यादा चीजें खराब हो रही हैं उतनी उनकी उम्मीद बढ़ती जा रही है। क्या कह रहे हैं, या बनी यजहबू, अरे मेरे बेटा जाओ, तहससु मिन यूसुफ, जाओ यूसुफ का पता लगाओ और उसके भाई का, वला तैअसु मिन रूहिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, ये है जो की पॉइंट है यहाँ पे, ये है जो समझने की बात है कि जब गम पे गम आता है तो सबसे पहले शैतान अल्लाह की रहमत से मायूस करता है कि अब कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तब इसको हाईलाइट कर ले, वला ताई असु बेरोहिल्ला, अल्लाह की राहत से कभी मायूस नहीं होना। क्यों नहीं होना? इन्नहु ला ययअसु मिन रूहिल्लाहि इल्लल कौल काफिर, नहीं मायूस होते अल्लाह की रहमत से मगर काफिर। जो मोमिन है उसके हालात कितने भी खराब हो जाए वो मायूसी के गड़े में नहीं जाता। क्योंकि मायूसी क्या चीज है, अगर आप गौर करें तो मायूसी है कि इंसान ये समझ ले कि अब कुछ भी सुधरेगा नहीं, अब कभी हालात ठीक नहीं हो सकते, अब कुछ बाकी नहीं बचा। लेकिन ये वही सोच सकता है जिसका अल्लाह पर ईमान ना हो, और जो अल्लाह ताला को जानता है वो जानता है कि इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज करने पर कादिर है, शयइन। वो मायूस कैसे हो सकता है जो जानता है कि उसका रब जो है वो समी है, वो बसीर है, वो हई है, वो कयूम है, वो करीम है, वो मुजीब है, वो रहमान और रहीम है, वो गफूर और रहीम है, वो सब कुछ कर सकता है, हर चीज उसके हाथ में, वो कहार है, वो जब्बार है। कैसे हो सकता है कि वो कह दे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब खत्म हो गया सब कुछ, अब कैसे सही हो सकता है? क्योंकि इंसान ये तब सोचता है जब वो हर चीज अपने हाथ में समझता है ना, तो उसको लगता है मेरे हाथ से चीज निकल गई है। हाथ से चीज आपके निकली है, अल्लाह के लिए निकली। हाँ, हमारे हाथों से चीजें निकल जाती है, बहुत जल्दी निकल जाती है। हमारे हाथ में है क्या, पहले ये सोचे क्या है हमारे हाथ में? हमारे हाथ में तुम्हारी अपनी सांस भी नहीं है, तो हमने कब से समझ लिया कि चीजें हमारे हाथ में? तो जो कहता है कि हाँ एक रब है, जो करीम रब है, जो मेरा रहीम रब है, जो मेरा वदूद रब है, और जो हर चीज पर कादिर रब है, वो कभी मायूस नहीं हो सकता। और ये बात ऐसी है कि जब इंसान सोचता है ना, क्या कभी सब कुछ सही हो सकता है, कि ये कैसे होगा, ये अंदर से उठता है ना सवाल, तो इसका जवाब है ये कि रहमत, रब की रहमत ऐसी चीज नहीं जिससे आप मायूस हो। वो रब है ना, वो सब सही कर देगा। इस बात में ही जैसे ऐसे लगता है कि किसी ने दुखते जख्म पे मरहम रख दिया, बेचैन दिल को जैसे करार आ गया, जैसे किसी ने तपती धूप में साया कर दिया हो कि वला तई असूम रूह इल्ला, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। वैसे तो आपने समझा ही ना ना फिर रब को, अगर आप मायूस हो गए तो फिर तो आपने उसको समझ ही नहीं सके, फिर आप जानते ही नहीं वो है कौन। आपने ऐसी बात समझ ली उस आद के बारे में? तो वो जो शाहरख से भी ज्यादा करीब रब है, उससे कौन भला मायूस हो सकता है, चाहे बेबसी कितनी ही हो। वो हस्ती है जिसके कुन कहने से जहान कायम है, जहान, जो जहानों का मालिक है, जहानों का पालनहार है, जो जहानों को चलाने वाला है, तो मैं क्या चीज और मेरे मसले क्या? तो नेगेटिव बातें और मायूसियां शैतान दिल में डाल डाल के इंसान को परेशान करता है, उसको नाकारा करता है, उसको दुखी करता है, उसको मायूस कर देता है, और मायूसी डिप्रेशन तक ले जाती है। तो इंसान फिर बिस्तर पे पड़ जाता है। तो इसलिए इंसान हमेशा इस चीज को जहन में रखते हुए, क्योंकि जिंदगी में मसले आने हैं, जिंदगी के अंदर मुश्किलात आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, ये जिंदगी है दुनिया की, इसमें आपको ऑप्टिमिस्टिक रखती है ये बात, यानी पॉजिटिव रखती है ये बात। ये अल्लाह ताला से हुस्ने ज़न है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूं। तो आपने अच्छा ही गुमान करना है कि अल्लाह मेरे साथ अच्छा ही करेगा। देखिए ना सहाबा कराम है, वहां पे ओहद में पता चल गया कि अबू सुफियान वो वापस लश्कर लेकर आ रहा है। अब क्या होगा, कुछ जख्मी है, कुछ शहीद हो गए हैं, फिर सब लुट गया, सब कुछ ऐसे लग रहा था कि बस अब हमारे हाथ में क्या, अब तो शिकस्त हो गई। और उसका एक इतना बड़ा सदमा था, ये हो क्या गया हमारे साथ, हम तो फतेहमंद थे और ये क्या हुआ। उस वक्त सूरह आले इमरान में क्या होता है कि जब उनको आके कहा कि वो लोग आ रहे हैं अब वापस तुम लोगों को पकड़ने के लिए, तो वो आगे से क्या बोले, हसबुन अल्लाह व नियमल वकील, हमारे लिए तो अल्लाह ही काफी है ना। उन्होंने तो नहीं ये कहा कि अब खत्म हो गया, अब तो बस हम भी मर जाएंगे, अब तो खत्म सब कुछ ही। और आपको पता है, ये शायद आपको ये वाली इबादत पता ही नहीं है। एक इबादत आपको बताऊं, हदीस में आता है कि जो अच्छे दिनों का इंतजार करना है ना, वो भी इबादत है। सुभान अल्लाह, ये जो आप अच्छे दिन का इंतजार करते हैं ना कि जरूर मेरे दिन बदलेंगे, ये भी ये अल्लाह ताला से ऑप्टिमिज्म है ना, कि अल्लाह ताला से पॉजिटिव गुमान है, ये अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, ये भी इबादत है। क्योंकि अल्लाह से मायूसी कुफर है। अकबरुल कबायर जो सबसे बड़ा गुनाह है ना, आपको पता है वो शिर्क है, और उसके बाद अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाना, ये हदीस है मुस्नद अहमद में। तो अल्लाह से मायूस होना, उसकी रहमत से मायूस होना, उससे उम्मीद तोड़ देना, ये इतना बड़ा गुनाह है शिर्क के बाद। आप ससर ने फरमाया ये गुनाह है। ये भी ना कभी कहे अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, बाज लोग ये सोचते हैं कि कभी नहीं अब मेरी माफी होनी, कभी नहीं ऐसे हो सकता। नहीं, कैसे, क्या आपके गुनाह इतने बड़े कि अल्लाह की रहमत से भी ऊपर चले गए। तिलावत चलाए यहाँ था, चलो।
وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
जजाक अल्लाह खैर। तो रौहिल्ला क्या है, अल्लाह की रहमत, रहमत के लिए ये लफ्ज आया है रऊ का, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत भी ऐसे ना जैसे ठंडी हवा का झोंका होता है, वैसे रऊ रूह को कहते हैं। और वो भी इंसान को बचा लेते, यानी इंसान की असल तो रूह ही है उसकी, उसके जिस्म तो वैसे नाकारा है। फलम दखलु अलैहि, तो जब वो दाखिल हुए उस पर, यानी भाई जो थे वो उस पे दाखिल हुए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे। ही की जमीर किस तरफ जा रही है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। तो जब वो, अब कितनी दफा, किस किस टाइम, अब दो दफा वो पहले आ चुके हैं, तीसरी दफा आ रहे हैं, बाप ने भेजा ना कि जाओ। गालू कहने लगे, या अय्युहल अजीज, ए अजीज, मस्सना, पहुंची हमको, व अहलाना, और हमारे घर वालों को, अद्दुर्रु, तकलीफ, यानी इतने कहर था। आप सोचिए इतनी भूख की जो शिद्दत होती है, अल्लाह ताला माफ करे और किसी को ना दिखाए। आपको पता है क्यामत के दिन इंसान के लिए भूख और प्यास का भी एक अजाब होगा। एक जहन्नमियों को तो होगा ही, लेकिन जो हशर के मैदान में भी इंसान इतनी भूख और प्यास महसूस करेगा जितनी उसने कभी नहीं की, और जो जितना ज्यादा खाते हैं उनकी भूख और प्यास उतनी ज्यादा होगी। तो वो कहने लगे कि हमें तो, और हमारे घर वालों को, हमारी फैमिली को। अब उन्होंने घर वाले क्यों कहा, इसलिए कि जब आप किसी को, किसी की सिंपति लेना चाहते हैं ना, हमदर्दी, तो आप कहते हैं मेरे बाल बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्यों कहा जाता है, इसलिए ताकि दूसरे के दिल में रहम आ जाए। तो हमारे तो घर वाले, बीवी बच्चे बड़ी तकलीफ में, वह जितना बीबी दो, और हम लाए हैं पूंजी बहुत हकीर सी, यानी हमारे पास जो अब देने को भी कुछ नहीं रह गया, कोई सामान नहीं है, बहुत ही यानी हकीर सी पूंजी, जो जो भी बचा कुछ घर में रह गया होगा वो ले आए होंगे। फाउफी लना कैलिया, नहीं हमें पूरा पूरा दीजिए, आपको पैमाना, अब हमें पैमाना भर के दे दे, हालांकि पूंजी तो उतनी नहीं है, वहां पे फ्री थोड़ी दे रहे थे वो। वो तो कुछ ना कुछ आके आप ट्रेड करते थे, कुछ देते थे तो फिर ये गल्ला दिया जाता था, लेकिन अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। यानी कितनी वो ऐसी हालत में आ गए, फकीराना हालत में, कि आप मांग रहे हैं और कह रहे हैं वो तसद्दक आलैना, और सदका करें हम पर, है बादशाह आप हमारे पर, है अजीज, हमारे ऊपर सदका कर दे। इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन, अल्लाह ताला अच्छा बदला देता है सदका करने वालों। यहाँ से हमें ये भी पता चला कि सदका करने के ऊपर अल्लाह ताला खुश होता है और उसका बदला देता है। हालांकि अल्लाह ताला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह तबारक ताला तो गनी है, लेकिन जब हम उसकी मखलूक के ऊपर सदका करते हैं तो अल्लाह ताला राजी होता है इस काम से। तो वो कहने लगे, अब हमारे पास कीमत तो है नहीं, तो आप ऐसा करें कि हमारे हमारे ऊपर कोई सदका ही करे, हमारे ऊपर कुछ कुछ चैरिटी कर दें। तो अपनी वो अपनी बेबसी भी बता रहे हैं और एक फरियाद कर रहे हैं कि अब हम और क्या कर सकते हैं। काला, उसने कहा, हल अलिम तुम मा फाल तुम भी यूसुफ वाखी, क्या तुम्हें पता भी है तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था, और उसके भाई के साथ, भाई को भी सारा वक्त सताते रहे थे, तो तुमने क्या किया था, तुम्हें कुछ याद है। इद अंतुम जाहिलून, और सुभान अल्लाह, मैं तो हैरान हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे इंसान थे भाई, कैसे इंसान थे कि खुद उनको एक्सक्यूज दे रहे हैं, फरमाते हैं जब थे तुम ला इल्म, जब तुम जाहिल थे, जब तुम्हें पता नहीं होता था ना, तो तुमने उस वक्त क्या किया था यूसुफ और उसके भाई के साथ। अब उन्होंने अपना राज खोला, तुम्हें याद है, अब इतने अरसे से क्यों नहीं उन्होंने बताया था। कहा जाता है कि पैगंबर जो होते हैं ना, वो हर चीज अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं। वो पता है हिजरतें भी जो करते हैं, या जो भी अजाब की जो भी उनको सुनाते हैं बात, तो वो भी अल्लाह के हुक्म से ही करते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता था कि अल्लाह का हुक्म ना हो और वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करते। तो यकीन अल्लाह का हुक्म जब आया तभी उन्होंने अपना बताया कि मैं ही यूसुफ हूँ। और दूसरी बात, बाज़ मुफसिरी ने ये लिखी है कि अब वो बादशाह जो था वो मर चुका था, और सारा समझ लें कि सब कुछ होल्ड यूसुफ अलैहि सलाम का ही था। वो बादशाह का बेटा बादशाह बना, लेकिन वो भी बेटा था ना उसका, तो जब यंग कोई बनता है तो उसको तो वजीरों की इनकी जरूरत पड़ती है, बहुत ही ज्यादा उन पे डिपेंडेंट होता है। तो अब इनके पास काफी ज्यादा पावर थी, इसलिए आप देखेंगे कि वो उनको बुला भी सकती है। तो जब तुम पे जहालत छाई हुई थी, यानी तुम उस वक्त तुम जानते नहीं थे ना, तो इसके अंदर भी एक हमदर्दी है। देखें कितना कितना लीनियंट एल्टीट्यूड है। ये नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था जरा याद है तुम्हें, नहीं, उस वक्त तुम्हें पता नहीं था ना तो इसलिए तुमने किया। ऐसे आप बच्चे से गलती हो जाए और आपको कहें कि बेटा आपको पता नहीं था ना इसलिए आपने किया ये, तो इसका मतलब क्या है, तो आप उसको ये डांट तो नहीं होती ना, बल्कि आप उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। कालू अ इन्नक ला अंता यूसुफ, अब वो तो हैरान हो गए, मतलब अब उनको क्लिक किया कि आप यूसुफ हैं, قال انا يوسف وهذا اخي, میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی. تو پھر یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ قد من اللہ علینا. آگے یہ نہیں میں یوسف ہوں اور اب تمہیں پتا نا جو تم نے مجھے کیا تھا, اور اب دیکھو سر اب میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اب وہ سارے دن گئے جب میں ایسے تھا, اب میں تمہیں بتاتا ہوں. نہیں, یہ سب اللہ تعالی کا احسان ہے میرے اوپر, ہم پہ یہ اللہ کا احسان ہے. میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, دیکھا آج میں کہاں پہنچ گیا. دیکھو کوئی فخر, کوئی تکبر, کوئی غرور, کوئی بڑائی, کچھ بھی نہیں, اتنی عاجزی. من کہتے ہیں احسان کو, اللہ کا احسان ہے, یہ نہیں کہ میرا کوئی کارنامہ ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھے انسان جو جب یعنی کسی کمزوری کی پوزیشن میں ہوتا ہے تب تو سارے ہی عاجز ہوتے ہیں, تب عاجزی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. لیکن جس وقت انسان کسی ٹاپ پوزیشن پہ جا کے بیٹھ جائے, اس کے اندر جو عاجزی آئے تو پھر بات تو تب بنی نا. کمال تو آپ کا تب ہے کہ جب آپ کے پاس پاور ہے اور آپ کے اندر عاجزی ہے. واقعی کیا آپ کے پاس پاور ہی نہیں, آپ بڑی عاجزی کے اپنے درس دیتے پھرتے ہیں کہ میں بڑی عاجز ہوں, میں بڑی یہ ہوں, دیکھو میں کتنی ڈاؤن ٹو ارتھ. وہ تو بھائی آپ کا اب کیا, آپ کیا چیز کیا. لیکن جس وقت آپ کے پاس کوئی عہدہ آ گیا, آپ کے پاس مال بہت ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا پروفیشن ہے, آپ کو کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے, وہ تب آپ کے اندر عاجزی ہو تو تب پتا چلے کہ آپ کیا چیز ہے. یہ کیا عاجزی کے بھاشن دینا, تب یہ ہے عاجزی. دیکھیں یوسف علیہ السلام کا پتا چلتا ہے کہ وہ چینج نہیں ہوئے, نہ وہ پہلے کوئی تکبر والے تھے کہ میرے پاس تو حسن کتنا ہے. اب انسان کے پاس حسن آ جائے نا, اس کے پیر ہی نہیں زمین پہ ٹکتے, وہ تو شیشے سے ہی نہیں ہٹتے. ایسے لوگ اپنے آپ کو ہی دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے, اپنی سیلفیاں لے لے کے خوش ہوتے رہتے, بس اپنے آپ کو ہی پوجتے رہتے. یوسف علیہ السلام کو دیکھے نہ کہیں شکل حسن, اپنے جو خاندان ہے, خاندانوں پہ بھی لوگ بہت پھولتے ہوں, بار بار ان کے ذکر کرتے, نہ اس کا کوئی ایسا تکبر ہے, نہ حسن کا کوئی تکبر ہے, پاور بھی آ گئی, کوئی تکبر ہی نہیں ہے. ہم چھوٹے لوگ ہیں نا, چھوٹے ظاہر بات ہے خالی برتن تو پھر بچتا بہت ہے, تو ہم چھوٹے لوگ ہیں اسی لیے ہمیں ذرا سی بھی چیز مل جائے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیکھیں کیسے ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنا کچھ بھی آ جائے تب بھی وہ دیکھیں ذرا کوئی بڑائی نہیں. اللہ نے احسان کیا ہے, میرا کیا چیز, میرے کیا کمال. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک کوئی بھی, دیکھیں ابھی بھی ایک درس ہے جو ان کو دے رہے ہیں, ایک بات سمجھا رہے ہیں. کوئی بھی یہ نہیں کہا کہ میں ہم نے ایسا کیا, کوئی بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے اللہ اس کا اجر, ایسے محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا, ایسے احسان کرنے والوں کا اللہ اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی تقوی اور صبر ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر اللہ ریوارڈ کرتا ہے. تقوی کیا ہے؟ گاڈ کانشیسنیس. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے, اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا. صبر کیا ہے؟ جو آپ نے سارا وقت صبر ہی تو دیکھا ہے, ابھی میں نے آپ کو سمجھایا بھی ہے کہ صبر کتنی چیزوں پہ صبر ہوتا ہے, عذیتوں پہ لوگوں کی بھی صبر ہوتا ہے, ان کے رویوں پہ بھی صبر ہوتا ہے. تو ایسے محسنین کا اجر, محسن پتہ ہے کون ہوتے ہیں؟ اب بار بار دیکھیں محسن کی بات آ رہی, یعنی یہ ایسا لگتا ہے سورت میں کتنی دفعہ جیسے ذکر ہی محسنین کا ہے. محسن جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے ساتھ جیسا کر رہا ہے ویسا نہیں کرنا, آپ نے اس سے اوپر اٹھ کے آپ نے آنا ہے, سمجھ آئے؟ آپ نے اس کے لیول پہ جا کے اس سے نہیں سلوک کرنا, یہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ایسے کروں, انہوں نے کیوں ایسے کیا تھا, ہم بھی ایسے ہی کریں گے, یہ نہیں ہوتا محسن. اب یوسف علیہ السلام دیکھیں محسن ہے, وہ تو نہیں ان کو لگا لگا کے ان کو سناتے, ان کو تانے دیتے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو ہیلپ فل ہوتا ہے, محسن وہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے ایزی ہو, جو ہمدردی رکھتا ہو. محسن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو, معاف کر دینے والا ہو, وہ محسن ہوتا ہے. محسن ایسے ہی نہیں بن جاتے, सखी को भी मोहसिन, सखी जो होता है वो भी मोहसिन होता है, देने वाला। तो अल्लाह ताला मोहसिन का अजर जाया नहीं करते। जाया मतलब क्या, यानी इंसान कोई नेकी करता है ना, इंसान सोचता है लो इसका तो कोई अजर ही नहीं मिला, मुझे इसका क्या मिला, मुझे क्या फायदा हुआ इसका, तो वो सोचता जाया हो गई। अगर अल्लाह की बात पे यकीन है तो मोहसिन का अजर जाया नहीं होता। आराम से बैठ जाए आप, कहीं नहीं गई आपकी नेकी, जो आप क्या फायदा नेकी करने का, आजकल तो कोई जमाना ही नहीं नेकी करने का, क्योंकि आप सोचते हैं वेस्ट हो गई। नहीं वेस्ट हुई, वो है सेव की भी अल्लाह ताला ने अपने पास, फिक्र ना करें मिल जाएगा उसका रिवॉर्ड। अल्लाह किसी का रिवॉर्ड रखता नहीं है, क्यों इतने थोड़े दिले होते हैं कि फौरन मिल जाए, फौरन नहीं मिला देखो जाए क्या फायदा हुआ हमें नेकी करने का। आम तो बाज आया ऐसी नेकियों से। आप सोचें कि यूसुफ अलैह सलाम को नेकी करने पे क्या मिला, जेल, जेल और कितने सालों की जेल। अब वो कहते हैं क्या फायदा मेरा नेकी करने, मैं तो नेकी ही ना करता, मैं तो बेहतर ही था तो कि उन औरतों की बात ही मान लेता। तो लेकिन उनको नेकी करने पर जो मिला उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी तो नेकी जाया हो गई, आइंदा से तोबा ऐसी नेकी पे नहीं। तो नेकी करके कभी भी ये ना सोचे कि जाया हो गई, वो जाया नहीं होती। मगर बात ये कि हमारा ईमान है कि नहीं, कि अल्लाह के पास भी एक अकाउंट है और वहां पे भी मिल सकती है। तो उन्होंने भाइयों को एक तरह से नसीहत भी की, असल में तकवा और सबर तो खुद किया था ना, लेकिन खुद नहीं कहा कि मैंने देखो तकवा इख्तियार किया मैंने, फरमाया जो सबर करता है जो तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला अजर जाया नहीं करता। देखो लेकिन अल्लाह ताला ने कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया, कितना बड़ा एहसान किया, और अल्लाह मोहसिनीन को ऐसे ही देता है। तो जब भी ऐसा मौका आ जाए ना कि आप दूसरे ने कोई गलती की आपके सामने आ गया वो और आपका अपर हैंड है अब, तो उसको जिता जिता के ताने दे के ना मार दें उसको, अब जलील ना करना शुरू कर दें कि अब चलो मैं अब पिछले सारे बदले लेती हूं, इससे आप जीत नहीं जाते, ये कोई जीत नहीं होती, ये दूसरे को हराऊंगी तो मैं जीतूंगी। कोई आपके सामने आज बुरे हाल में आ गया, देखिए ना एक दिन मसलन कोई रिश्तेदारों में भी हो जाता है, यहाँ पे तो देखिए रिश्तेदारी की बात है, रिश्तेदारों में भी हो जाता है, किसी जगह पे भी हो सकता है, एक दिन किसी ने आपको सताया था, फिर अल्लाह ने आपके हालात बदल दिए। जिसने आपको सताया था ना वही एक दिन आपके सामने आ गया और आप उसको कोई चीज की जरूरत है, अब आप क्या करते हैं ये है जो यहां से आपने सीखना। अब उस वक्त आप बोलते क्या है, उस वक्त आपकी गर्दन में सरिया तो नहीं है, उस वक्त आप अकड़ तो नहीं जाते, उस वक्त आप उसको सुनाते तो नहीं है वो सुनाई के बस फिर वो याद रखे, ये तो नहीं है। नहीं, यहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीखना है तो ये लेसन, और ये हम पढ़ तो इसी ले रहे हैं ना, वरना क्या पढ़ने का फायदा अगर हमने कुछ सीखना ही नहीं। इसे कहानियां तो नहीं सुनाई जाती, अब ड्रामा देख रहे हैं, मैं तो अब देख के बंद कर दिया। कालू उन्होंने कहा तल्लाह कसम अल्लाह की लकद आथरकल्लाहु अलैना, वाकई बेशक अल्लाह ताला ने आपको हम पे तरजीह दे दी है, वहीन कुन्ना लखवातीन, और हम वाकई यकीनन इसमें तो कोई शक ही नहीं कि हम खताकार थे, हमने गलत किया, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। लो अब वो मान भी गए अपनी गलती, अब तो और सुनाओ ना, अच्छा अब तुम्हें याद आ गया माफी मांगू, अब जब तुम्हें जरूरत पड़ गई तो मैं याद आ गया, अब माफी याद आ गई तुम्हें, उस वक्त का याद है, ये का याद है, अभी तक तो तुमने बिन्यामीन के साथ भी क्या किया। वाकई बड़े लोग बड़े ही होते हैं, हमारे जैसे छोटे लोग छोटे ही रह जाते हैं जो ये हरकतें करते हैं। फिर तो नबियों का मकाम, उनका मर्तबा, उनका ये देखिए फिर कैसा है, और यही हमारे रोल मॉडल्स हैं। अल्लाह करे ये बातें हमें याद भी रह जाएं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम, आज तो कोई तुम्हारे पर इल्जाम नहीं, यानी सिर्फ माफी ही नहीं। एक होता ना बहुत सुनाते हैं और उसको कहते हैं अब चले जाओ यहां से, अब मैंने बस तुम्हें माफ कर दिया, मुझे शक्ल ना दिखाना अपनी। एक ये है माफ करना और एक माफ है ला तसरीब। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें भी इतने बड़े दिल दे दे कि हमारे साथ कोई बुरा भी करे तो हम माफ कर सके। तो ला तसरीब नहीं, कोई इल्जाम तुम्हें को बात ही नहीं। मैं कहता कोई इल्जाम ही नहीं, कोई तुम्हें बुरा भला ही नहीं, कोई तुम्हें ब्लेम करना ही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई तुम्हें जलील करना भी नहीं, और वो गुना याद भी कराया नहीं। याद है किसी को तो तुमने कुएं में फेंका था ना, नहीं याद तुम्हें तो मैं याद करा देता हूं, नहीं गुना भी नहीं याद कराया। फरमाया कोई इल्जाम ही नहीं तुम पे, यानी आप तुम ये मेंशन ही नहीं होगा। अब देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतह करके आए थे ना, तो वो कुफारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी आ गए इसी तरह। अब ये वो लोग हैं, भूलती तो नहीं है ना ये बातें, ये वो ही चेहरे हैं, ये वो ही लोग हैं ना जिन्होंने रातों रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह से हिजरत करने पे मजबूर कर दिया था, अपना घर बार छोड़ने पे मजबूर कर दिया था, कि चुपते में निकल गए थे उनसे, जिन्होंने घर को घेरे में लिया हुआ था, जिन्होंने कत्ल की साजिश की हुई थी, ये वो लोग हैं ना। आज वो कैसे खड़े हैं कि हाय अब तो हम आपके रहम और करम पे हैं, आप करीम बाप करीम भाई। आप देखें उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत फरमाई थी, ला तसरीबा अलैकुम अल्यौम, आज तुम्हारे पर कोई इल्जाम नहीं, यानी जस्ट ठीक है तुम्हारे लिए माफी है, माफी नहीं बल्कि तुम्हें कुछ कहेगा भी नहीं। अल्लाह अकबर, यग़फिर अल्लाहु लकुम, और फिर आगे उनके लिए दुआ भी है, अल्लाह तुमको माफ कर दे, वहु अरहमुर राहिमीन, मैंने माफ कर दिया, अल्लाह भी तुम्हें माफ कर दे। क्योंकि जो हकुकुल इबाद होते हैं तो जरूरी है कि वो इंसान माफ करे जिसके साथ ज्यादती की है, जाहिर है ज्यादती तो उसके साथ की भी, तो उन्होंने खुद भी माफ कर दिया और ये भी कह रहे हैं अल्लाह भी आपको माफ कर दे, और वो सब रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला। तो यानी अब बता दिया ना कि ला तसरीब का मतलब समझ आ गया ना, कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई अब बात है ही नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई मैंने जिक्र ही नहीं करना इसका, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम ही नहीं है, यानी चैप्टर क्लोज हो गया। हम तो माफ करने से पहले भी और बाद में भी इतना सुनाते हैं कि बस इसने गलती की तो कही कैसे, वो खुद हम कितने गुनाहगार हैं, खुद हमने कितने अल्लाह की नाफरमानियां की। सोचो अल्लाह ताला भी हमें सुनाने लगे तो हम किधर जाएं, हम किधर मुंह छुपाएं। और उन्होंने देखिए उन्होंने ये कन्फेस किया कि हमसे गलती हुई है, ये नहीं, और ना यूसुफ अलैहि सलाम ने नहीं उनको कहा था कि तुम माफी मांगो, अब माफी मांगोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, नहीं उन्होंने खुद कहा कि हम माफी मांगते हैं। और तोबा के अंदर सबसे पहली बात यही होती है कि इंसान माने कि मैंने गलत किया है, और ये मान लेना भी ना ये भी आला जरफी होती, कोई नहीं आपकी शान में कमी हो जाती है अगर हम कह दें नहीं मेरे से गलती हो गई है आप माफ कर दें, हम तो लगता है कि जैसे पता नहीं आसमान ही गिर जाएगा अगर हमने ये कह दिया था, क्योंकि हमारी अनाएं है ना, अनाएं बहुत बड़ी है हमारी, तो कहा नहीं जाता। और कोई हमसे माफी मांगने लगे तो एकदम माफी दी नहीं जाती, नहीं नहीं मैं कैसे माफ कर दूं, मेरे तो दिल पे लिखा मैं कैसे कर दूं। इधबू भी कमीसी, फरमाया ले जाओ मेरी कमीज को, आधा इसको मेरी अपनी कमीज दी उनको और फरमाया फअल्कूहु अला वजही अभी, तो डाल देना उसको मेरे बाप के चेहरे पे, याति बसीरा, ये नहीं कहा तुम्हारे बाप के चेहरे पे जाके डाल देना, मेरे बाप के। देखा है कितना फर्क है अदब में यूसुफ अलैहि सलाम के और भाइयों के, जब भाई बात करते थे तो तुम्हारा बाप इसका बाप नहीं कहते थे मेरा बाप, और वो क्या कहते हैं मेरा बाप, लगे जुदाई कितनी लंबी हो चुकी है, कहाँ बच्चे थे अब कहाँ जवान होके बड़े आदमी बन चुके, उस उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। कमीज का कितना रोल है ना इस सूरह में, शुरू में भी कमीज की बात, इसी कमीज के ऊपर, तो लेकिन कमीज इज ऑलवेज ऑलवेज अ होप, आप देखिए, पहले कमीज आई तो याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरा बेटा फौत नहीं हुआ, मरा नहीं है, उसको भेड़िए ने नहीं खाया, क्योंकि कमीज सही सालिम थी। दूसरी दफा जब कमीज की बात आई तो कमीज से पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है, और तीसरी दफा कमीज की बात आई तो बाप की आंखों की बिनाई वापस आने लगी। लेकिन क्या कमीज का कमाल है? हम हो ना हमारे जैसे लोग हों तो कमीज को ही एक वो तबरुक बना के उसकी ज्यारतें शुरू कर दें, कमीज के टुकड़े काट काट के अपने पास रख लें, ऐसे ही कर देना। लेकिन वो कमीज का कमाल नहीं है, अल्लाह चाहे तो कमीज से अब बिनाई वापस आ जाए, अल्लाह चाहे तो वो कमीज कुछ, कमीज का अपना कुछ वो नहीं है, यानी कमीज के अंदर कुछ पावर नहीं है। वातूनी बी अहलिकुम अजमाइन, और अपने सारी फैमिलीज को साथ ले आओ, यानी यहाँ आ जाओ। और बाज़ तफसीरों में लिखा है कि उन्होंने काफी साजो सामान, बड़ा कपड़े वपड़े, बहुत चीजें, ऊंटों के ऊपर 200 के करीब ऊंट, बाज़ तफसीरों में लिखा है कि इतने ऊंट भेजे कि जाओ जाके दो, और फिर वो बड़े शान के साथ आओ। और फिर वो जब काफला आया, जब उनकी फैमिली आई, तब भी बड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल से इनका इस्तकबाल किया था, तो उनको भेज दिया कि जाओ एक मेरी कमीज ले जाओ। अच्छा, अब उधर क्या हो रहा है कनान में? अब कनान जो है ना, ये इजिप्ट से 8 डेज की मसाफत पे था, इतना डिस्टेंस है, 8 दिन तक लोग चलते रहते थे तो फिर पहुंचते थे। वलम्मा फसलत अल-अय्रु, और जब जुदा हुआ काफला, यानी यहां से अभी काफला चला है, ठीक है, अभी बहुत दूर है ना, अभी यहां से चला है कनान से, मिस्र से, सॉरी मिस्र से चला है। काला अबू, कहा उनके बाप ने, सुबहान अल्लाह, इन्नी ला अजिदु रीहा यूसुफ, कितनी खूबसूरत बात है ना कि मैं यूसुफ की खुशबू मुझे आ रही है, अल्लाह अकबर, मैं ये बात कहूँ लौला अंतु फन्नी दून, अगर ना तुम मुझे बहका हुआ कहो कि बूढ़ा हो गया, इसका दिमाग ही ऐसे हो गया, ये तो ज़ईफ़ अल-अक़ल हो गया, सिठिया गया जिसको हम कहते हैं, तो अगर तुम मुझे ये ना कहो तो मैं तुम्हें कहूंगा मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अभी कमीज चली है वहां से, सुभान अल्लाह। तो पहले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी खुद कुएं में पड़े हुए थे, कितना डिस्टेंस होगा कुएं का, और फिर भी इनको खुशबू ना आई, यूसुफ खुद पड़े हुए थे वहां तो खुशबू ना आई, अब कमीज चली है तो खुशबू आ गई। ये मैं बात आपको समझाना चाहती हूँ कि देखो, चीजों के अंदर कोई नफा नुकसान का नहीं होता, ये अल्लाह ताला है जो डालता है। हजरे अस्वद को वो चूमते थे हजरत उमर, तो क्या फरमाते थे कि तू तू ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है, इतनी जो जन्नत का पत्थर है उसको फरमा रहे हैं। हम तो ये जमीन की चीजों को ही कह देते हैं कि ये पता नहीं इनमें क्या पावर है, पत्थर पहन लेते हैं हाथों में उंगलियों में, ये फलाना पत्थर पता नहीं मुझे क्या हेल्प करेगा और फलाना मुझे शर से बचाएगा, ये शिर्क होता है, इस तरह नहीं करें। इस चीज का अकीदा रखना कि ये पत्थर मुझे कुछ बचाएगा, ये पत्थर मुझे कोई फायदा देगा, ये कमीज मुझे फायदा देगी, ये चीज मुझे दे, नहीं, फायदा देना और या किसी शर से बचाना ये अल्लाह का काम है। इवन दवा भी खा रहे हैं ना, तो ये अकीदा रखे दवा नहीं काम देगी, अल्लाह है जिसने मुझे शिफा देगी। सही बात, अब देख लेना, वरना ये कमीज में ही पावर होती तो फिर उनको पहले ही कमीज से पता चल जाता कहाँ है यूसुफ अलैहिस्सलाम। कालू तल्लाह, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, इन कलफी दलालिकल कदीम, तो वो कहने लगे लो भाई आप तो फिर उस अपने पुराने खप्त में मुबतला है कि आपको बस यूसुफ ही याद आता जा रहा है और आपको तो ये बातें भूलती नहीं, और आप तो सारा वक्त यही करते रहते हैं। ये देखिए ना, इसका मतलब जो घर में थे ना लोग, जब बड़े अदब नहीं करते तो फिर बच्चे भी नहीं करते। अब ये बेटे तो गए हुए हैं, ये कौन है फिर जो कह रहे हैं? इसका मतलब जो उनके घर वाले थे, जो जाहिर है पोते पोतियां, जो बीवियां उनकी या जो भी और घर में और अफराद थे, उनको भी नहीं है अदब इस तरह से, क्योंकि इनके बेटे भी नहीं अदब करते। आप तो बस वैसे ही, आप तो खप्त में हैं, पहले भी इनके बेटों ने भी ये कहा था। फलम्मा अंजा अल बशीरु, फिर जब आ गया बशीर, बशीर कौन? खुशखबरी देने वाला। वो कौन था खुशखबरी देने वाला? कहा जाता है कि इनका जो बड़ा बेटा था ना, वही जो पीछे रह गया था, कह रहा था मैंने नहीं आना, वो उसने कहा मैं ही लेके जाऊंगा कमीज, मैं ही डालूंगा बाप की आंखों पे। ये वही था कि जो जिसने कहा था कि इसको कत्ल ना करो। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने देखे पहले नहीं इसका बताया, अब बताया कि वो बशीर था, और ये कहते हैं इसका नाम यहूदा था जो सबसे बड़ा बेटा था। तो अलका वाला वजी, उसने आके डाली बाप के चेहरे पे, फरतद्दा वसीरा, तो हो गया वो देखने वाला। तो अब कहते हैं कि उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे पास कुछ है नहीं वरना मैं तुझे देता, जो बशारत देने वाला होता है ना, ये भी अंबिया की सुन्नत है कि उसको कुछ ना कुछ नवाजते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। आपको पता है कि जब वो तबूक वाले सहाबा की जो तौबा कबूल हुई थी, तो उन्होंने भी खुशखबरी सुनाने वाले को कुछ दिया था, तो इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फरमाया कि मेरे पास कुछ है नहीं, बस मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला सकरातुल मौत तेरे ऊपर आसान कर दे, और यही हुआ था। फिर ये सबसे बड़ी इनाम था, जो चीजों से भी ज्यादा बड़ा था। तो ये बेटा क्यों चाहता था कि मैं ही जाऊं और मैं ही जाके बाप के उस पे डालूं आंखों पे, मैं ही खुशखबरी दूं बाप को, इसलिए कि जब किसी को तकलीफ पहुंची होती ना हमसे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर बाद में एहसास हो जाए ना कि मेरे ही जरिए इसको तकलीफ पहुंची है, वो गिल्ट तो होता है ना बंदे के अंदर, तो फिर कोशिश करें कि मैं किसी तरह अब इसका दिल खुश कर दूं। ठीक है, कोशिश करें, कोई भी है वो, चाहे वालदैन है, चाहे किसी की भी दिल आजारी आपने कर दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको एहसास हो जाए ना, तो ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, कि एहसास हो जाना कि मेरे से ये गलती हो गई है, उस वक्त ना उसी बंदे का जाके किसी तरह भी दिल खुश करें, कोई तरीका करें, लेकिन उसका दिल खुश कर दें। قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون, فرمایا نہیں تم میں, میں کہتا نہیں تھا تمہیں کہ مجھے وہ پتہ ہے جو تم نہیں جانتے, تم کہتے تھے کہ یہ آپ سٹھیا گئے ہیں, تم کہتے تھے آپ کا دماغ ایسے ہو گیا ہے, تم کہتے تھے آپ کہ تو پرانے خبط میں مبتلا ہیں, آپ کو تو بس ایک ہی بات آتی, نہیں اس میں کیا کیا میں جانتا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا, کہ اللہ ایک دن یوسف سے ملائے گا, کہ یوسف زندہ ہے, تم مانتے نہیں تھے نا, اور ये नहीं कहा, देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फर्क है ना, मैं एक बात बोलती हूँ, आप इससे सोचे इस बात में और जो यहाँ लिखी हुई है इसमें क्या फर्क है, इन्नी आलमू माला तालमू, मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, और एक है मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते, फर्क कितना बड़ा है ना। इंसान ये ना कहे कि मुझे पता है, मैं कहती नहीं थी, मेरा मेरा इल्म में कुछ चीज नहीं है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह इस सूरत को पढ़ के भी हमें आजी ना आए तो कब आएगी, कितने बड़े अल्लाह के पैगंबर, देखो कैसे उनके कलाम कैसे हैं, उनकी बातें कैसी, इसलिए कि दिलों में आजी है ना, तो बातों में भी फिर आजी झलकती है, जब दिल में आजी ना हो तो बातों से भी तकब्बुर ही फूटता है। قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا, अब वो बेटे बाप से कहते हैं अब्बा जान अब हमारे लिए बख्शिश मांगे हमारे गुनाहों की, इन्ना कुन्ना खातीन, हमसे खता हुई है, हम खताकार हैं। यानी आप यहां से पता चलता है कि अब उनको रिग्रेट हुआ वाकई, क्योंकि अपनी भी गलती का, मतलब ये नहीं कि यूसुफ अलैहि सलाम से सिर्फ क्या है उसके बाद छोड़ो अब हमें क्या, वो तो अल्लाह लेने गए थे, तो वो रस्मी वाली बात नहीं थी, वाकई उनको रिग्रेट हुआ था, वाकई वो पशेमान थे कि उनसे गलती हुई है, तो उन्होंने कहा कि हम अब्बा जान आप भी हमारे लिए इस्तगफार मांगे, इससे क्या पता चला, आप किसी को कह सकते हैं कि आप भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे बख्श दे, खास तौर पर किसी नेक इंसान को आप कह सकते हैं, और लेकिन ये है कि कभी ये ना सोचे हमने कौन सी को गलती की है, हमें किस बात की माफी मांगनी चाहिए, हमने कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया, अगर ये एटीट्यूड है ना तो फिर कोई गलती की माफी की बात नहीं, बात ये कि इंसान के अंदर रिग्रेट तो हो, पशेमानी और निदामत हो कि मेरे से क्या हो गया, वो अपने आप को वाकई खताकार समझे तो सही, समझेंगे तो फिर अगर आप अपनी गलती नहीं समझते कुछ तो किस बात की माफियां मांगते। तो और देखें ये हम सबके लिए इतनी बड़ी उम्मीद है ना, इन्होंने एक भाई मासूम जिसका कोई कसूर नहीं है उसको कत्ल करने का पूरा अपना तो इंतजाम कर लिया हुआ था, इतना बड़ा गुनाह किया जिससे कि उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। देखिए कहाँ वो बाप के लाडले, घर में मोहब्बतों में लाडों में पल रहे एक लाडला बच्चा, और कहाँ वो एक बाजार में बिक रहा है, कहाँ किसी का गुलाम बन गया, कहाँ जेल में पहुंच गया, कहाँ 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 उनकी जिंदगी में कितना टर्मोइल रहा। शुरुआत कैसे हुई थी? इनकी वजह से हुई ना, इनकी गलती। अब ऐसा कोई बंदा हो तो सारी जिंदगी ना छोड़े कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। बाज खवातीन तो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शती कि आपकी वजह से हमारी यहाँ शादी, आपने मेरी शादी यहाँ की थी तो आज मैं ये भुगत रही, आज मुझे ये मसले ना, आप मेरी करते तो जैसे ना। तो देखिए यहाँ पे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा, ना बाप ने कहा कि तुम लोगों की वजह से मैं सारी जिंदगी तड़पता रहा, रोता रहा, अंधा हो गया, मैं तो अब तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा, तुम लोगों ने यूसुफ के साथ ये किया। तो एक बात यह है कि अगर ये उम्मीद हो सकती है कि उनकी बख्शिश हो जाए तो क्या हमारी नहीं हो सकती? हम में से तो कोई कातिल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या इतने बड़े जुर्म करके भी अगर कोई ऐसा पशेमान हो कि अपनी बख्शिश कराने के लिए खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम क्यों नहीं अल्लाह से मांग सकते? तो वाकई फिर इनकी बख्शिश भी हो गई थी। काला सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, उन्होंने कहा अन करीब। सौफा जो होता है वो जैसे फा होता है ना, फा फिर का माना करते, सौफा अन करीब का माना करते। इस फा आप देखें, अच्छा इससे आप याद रखिएगा, फिर इसको आपको कभी नहीं भूलेगा। फा में थोड़ी सी जल्दी होती है, सौफा में थोड़ी सी देरी होती है। सौफा के लेटर ज्यादा है ना, जरा लंबा है, फा तो बिल्कुल छोटा एक ही लेटर है, तो इसमें बिल्कुल ही जल्दी, फौरन ही फिर ऐसे हो गया, और सौफा में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिले के बाद फौरन फौरन ही हो गया। अन करीब में बख्शिश मांगूंगा तुम्हारे लिए अपने रब से, ये क्यों का फरमाया कि मैं अन करीब मांगूंगा? दो इसके अंदर बातें थी, एक दो बात ये आती है, वो कहते हैं कि बाज मुफसरी ने ये लिखा कि उन्होंने कहा कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगा, उनसे देखूंगा कि उन्होंने भी माफ किया या नहीं। लेकिन ज्यादा जो राजे है वो ये है कि उन्होंने कहा मैं अनकरीब मांगूंगा, यानी रात के आखिरी पहर का इंतजार करूंगा, उस वक्त मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। क्योंकि आपको पता है ना, रात का जो आखिरी तीसरा पहर होता है उसमें अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे नजूल फरमा देता है। अल्लाह ताला पूछता है कोई है मेरा बंदा जो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसको अता करूं, कोई है मेरा बंदा जो मेरे से बख्शिश मांगता है तो मैं उसको बख्श दूं, किसी की कोई हाजत है तो मैं उसकी हाजत पूरी करूं, रब खुद फरमाता है। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, अन करीब दुआ करूंगा, और इन्नहू हुवल गफूर रहीम, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला तो बड़ा माफ करने वाला है, वो तो बड़ा रहम करने वाला है। और आज इवन वालदेन बच्चों के लिए इतने सख्त दिल कर लेते हैं कि कहते हैं हमने तुझे कभी माफ नहीं करना, तुझे आग करते हैं, मैंने तुझे दूध नहीं बख्शना, मैंने तेरी तूने मेरा मरा मुंह ना देखना। देखिए लेकिन हर एंगल से आप देखें, आप चाहे औलाद है चाहे वालदेन है, हर एंगल से देखें कितनी माफी की बात है। ऐसे नहीं मोहसिनी ना बन जाते, जब आपके दिल इतने बड़े होते ना तभी बनते हैं। अब जब एक ने माफी मांगने के लिए कोई खड़ा हो ही गया, अब हम फिरौन बन जाते हैं, नहीं माफ नहीं मैंने तुझे करना, माफ नहीं करूंगी, माफ भाई कह दें कि मैंने माफ कर दी, अल्लाह भी मुझे माफ कर दे। और ये देखे कि इन्होंने इतना बड़ा कसूर किया, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ अगर इन्होंने माफी मांग ली ना, अब बाज पता है रिवायात में ये भी आता है तफसीरों में कि इनको बाद में नबुवत भी मिल गई थी, ये सारे जो 11 भाई 11 सितारे है ना, तो इनको नबुवत भी मिल गई थी, अल्लाह ताला ने इनका गुनाह माफ कर दिया था। यानी आप देखिए स्टार्ट ऑफ द सूरा में इनका क्या कैरेक्टर है और एंड ऑफ द सूरा में क्या है। अब इतने बड़ा जुर्म करने के बावजूद इनको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, तो आप सोचें कि फिर हम ये सोचें कि हमने जिस पे भी अपनी जिंदगी स्टार्ट की थी ना, जो हमारे हो चुका, जो बचपन में हो चुका, जो हमने अपनी टीनेज में कर ली है गलतियां, बाले होने के बाद जितने 20s में कर ली या 30s में कर ली, अब हम इस चीज के ऊपर बोलते रहे जी मैं तो इतनी ऐसे थी, अब मेरे तो कभी नहीं हो सकता सही, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, जिस फेज में भी हैं आप, एज के जिस उम्र के आप नंबर पे हैं, जहां पे भी हैं, अब वहीं पे अल्लाह से माफी मांग रहे। अब बहुत सारे हम में से लोग इस पे बहुत रिग्रेट करते हैं कि जब हमने कुरान नहीं पढ़ा था, हमें कुछ समझ नहीं थी, हमने बड़ी गलतियां की हैं। हाँ की होंगी, लेकिन आज सूरह यूसुफ पढ़ने के बाद क्या करना है फिर? क्या उम्मीद नजर आती है? जो कत्ल करने की कोशिशें कर रहे हैं उनकी भी माफी हो सकती है। अल्लाह ताला नियतों को देखता है। हम भी तौबा करके नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अब वो पास्ट का जो गम है, उसका जो रिग्रेट है, वो अंदर ही अंदर खाए जाता है इंसान को। लेकिन जब वो याद आए तो बख्शिश मांगे, जब वो याद आए तो अल्लाह के आगे रो रो के माफी मांगे। तो और बाप की जो वैसे भी होती है, बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। आपको पता है जिन लोगों की दुआ रद्द नहीं होती उनमें एक बाप की भी दुआ है। अल्लाह अकबर। तो अपने बाप से भी इंसान दुआएं लेने वाला बने। और आपको स्टेजेस भी पता चल गए कि तौबा के स्टेज क्या है। कि इंसान शर्मिंदा भी हो, निदामत हो और इतराफ करे, माने कि मेरे से गलती, उसके बाद माफी मांगे।